हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 21 22 23 24 25 एंड 26। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानस राजहंसा प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्थ स्मरतव्यः सततं विष्णुः विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वे विद्धि निषेधायुर् एतयोर् एव किंकरः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू तत्राग्रह न परह प्रजीवसंतम् नवनीतचोरम् गोपांगनानां चदुकूलचोरम् श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 जिसका शीर्षक है पांडवों का सामयिक प्रस्थान। अर्जुन भगवान की उन समस्त उपकारों को, भगवान के सानिध्य में जो उसने पराक्रम कर दिखाए, भगवान की कृपा से उन सबको याद करते हुए कह रहे हैं श्लोक नंबर 21 में। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। अर्जुन कहते हैं, तत्त्वै धनुस्त इषव सरथो हयास्ते सोहं रथि नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसद् चरितम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोत्तमोष्याम् तत्त्वै धनुस्त इषव सरथो हयास्ते सोहं रथि नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदीश रिक्तम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमोष्याम् तत्त्वै धनुस्त इषव सरथो हयास्ते सोहं रथि नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदीश रिक्तम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमोष्याम्। अर्जुन कह रहे हैं, तत्त्वै धनुस्त, तत्व मतलब आज जब मैं उन साधारण से ग्वालों से हार के आया हूँ, आज भी मेरे पास वही धनुष है। तद्वै धनुस्त, मेरे पास वही धनुष है। इशवा, इशवा कहते हैं बाणों को, निश्चय मेरे पास वही बाण है। सरथो हयास्ते, और आज मेरे पास वही रथ है। जैसे हमने पहले वाले श्लोक में पढ़ा था कि अर्जुन ने बताया था कि उन सर्वशक्तिमान भगवान की पत्नियों को मैं लेकर आ रहा था, और रास्ते में गोपय रसद बिरबले न विनिर्जित, तो मुझे साधारण से जो नास्तिक थे, असभ्य थे, दुष्ट थे, गोपों के द्वारा मैं हार गया, मैं पराजित हो गया। तो आज उसी बात को आगे लेते हुए अर्जुन कहते हैं, तद्वै धनुस्त इषवस रथो हयास्ते, मेरा वही धनुष गांडीव, जिसकी टंकार सुनकर बड़े बड़े जो राजा थे, बड़े बड़े शूरवीर कांप जाते थे। इतने सारे युद्ध मैंने किए जिसमें अजय शत्रुओं को मैंने हरा दिया, वही धनुष, वही तीर और वही रथ जिस पर बैठकर मैंने इतने सारे युद्धों में जीता। सोहम रथी, इसके अतिरिक्त यहाँ पर बोल रहे वही मैं रथी अर्जुन, मैं अर्जुन जिसका नाम सुनकर सारे शत्रु थर थर कांपने लगते थे, वही मैं सोहम, वही मैं अर्जुन रथी, रथ पर बैठकर नृपति हे राजा, यत आनमंती उत्तम उत्तम उष्यां एवमोक्तवे। उत्तम का मतलब है बोया हुआ, उष्यां का मतलब है बंजर भूमि में। जिस प्रकार से बंजर भूमि में, बंजर जमीन में बीज डालेंगे तो कोई फायदा नहीं है, उसी तरह अब मैं हूँ और मेरे बगैर कृष्ण के बगैर मेरा भी अब कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा सारा बल, मेरा पराक्रम, मेरी शूरवीरता वैसे ही समाप्त हो गई, जैसे राख में जैसे घी डालते हैं वो समाप्त हो जाता है, जिस प्रकार से जादू की छड़ी से धन एकत्रित होता है वो समाप्त हो जाता है, और बंजर भूमि में यदि कोई बीज बोता है तो उसका कोई वो भी निष्फल हो जाता है, उसी तरह अब मेरा जीवन भी निष्फल हो गया है। अनुवाद देखिए, मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही महान रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं भी वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे, किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्रित करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार ली हुई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। सारी शक्तियां तथा बल परम स्रोत भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होते हैं। वे सब तब तक ही कार्यशील रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है। उनके ना चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह सारी विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है और जो ही बिजली घर विद्युत शक्ति देना बंद कर देता है तो सारे लट्टू बेकार हो जाते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर बैंक से सारे जितने भी हमारे घर में लाइट्स होती हैं वहाँ से जब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो सब जलते हैं, लेकिन अगर वहाँ से ही बिजली घर से ही शॉर्टकट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो क्या होता है, सारी जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं वो सब काम नहीं करती हैं। वैसे ही ऐसी शक्तियां भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जाती हैं या वापस ली जा सकती हैं। भगवान के आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है। जो भगवान यदि कृपा ना करे तो समझो कुछ भी नहीं भौतिक जगत में। आधुनिक सभ्यता, आधुनिक साइंस कुछ नहीं कर सकती। जब तक माता पिता बच्चे को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन माता पिता के ना चाहने पर बच्चे को खेलना बंद करना पड़ता है। मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। आज हमारे पास जो भी पावर है वो सब कृष्ण की कृपा से। जिस प्रकार से यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हम सब खेल रहे हैं भगवान की शक्तियों से, भगवान के पावर से हम सब उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही माता पिता बच्चे को ये वो वस्तु प्रदान नहीं करते हैं तो बच्चे का खेलना बंद हो जाता है। उसी प्रकार ये भौतिक जगत है वो भगवान का है, तो मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। जो भगवान के आशीष हैं उनके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति शव को सजाने के समान है। जैसे अगर किसी के शव को, बहुत ही सुंदर लड़की हो, उसको बहुत सारे अलंकार पहनाए गए हो, बहुत सारे नवलखे हार, उसको बहुत सारा माथा पट्टी, झूमर इत्यादि जितनी भी श्रृंगार की वस्तुएं वो सजा दी गई हो उसके ऊपर, लेकिन क्या फायदा जब उसके अंदर आत्मा ही नहीं है। उसी तरह एक जीव, एक मनुष्य, एक इस प्राणी, उसके पास सारा धन हो, बहुत सारा धन हो, बहुत सारा वैभव हो, बहुत सारा ऐश्वर्य हो, सब कुछ हो उसके पास, बहुत सारे पराक्रम हो, लेकिन यदि उसके अंदर से आत्मा निकल जाए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार से एक मनुष्य के अंदर बाकी सारे गुण हो, सारे सद्गुण हो, लेकिन यदि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो वो सारे गुण जो है वो उसके बेकार हैं। क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है वो वास्तव में भगवान की शक्ति है। यहाँ यह कहा गया है कि मृत सभ्यता तथा उसके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य, जादू की छड़ी से धन जुटाने के तुल्य, या बंजर भूमि में बीज बोने के तुल्य। मृत सभ्यता यानी जिसमें भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता वो मृत सभ्यता है। और वो सारे काम कैसे कर रही है, जिस तरह राख में घी डालो सब जाया है ना, उसी तरह जादू की छड़ी से धन इकट्ठा करो सब जाया, और उसी तरह से बंजर जमीन में बीज वो तो सारी मेहनत जाया। उसी तरह यदि हम सभ्यता का ढोंग रचा रहे हैं, हम बहुत एडवांस हैं, यदि एडवांसमेंट जीव के अंदर आ जाती है और उसमें से भगवान निकल जाते हैं तो सब बेकार है। इतना कहने के बाद अर्जुन अब युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने जो उनसे द्वारिका वासियों के विषय में पूछा था कि द्वारिका वासी सब कैसे हैं, एक एक का नाम लेकर पूछा था, तो आज उनके विषय में अर्जुन बता रहे हैं। राजस्त्वयानुपृष्टानां सुहृदाम्नः सुरपुरे विप्रशा विप्र
प्रशाप विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मथ निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मत्थितचेतसाम् अजानता मिवान्योन्यम् चतुः पञ्चावशेषिता राजंस्त्वयानुपृष्टानां सुहृदां नः सृत्पुरे विप्रशाप विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मत्थितचेतसाम् अजानता मिवान्योन्यम् चतुः पञ्चावशेषिता राजस्त्वयानुपृष्टानां
हे राजा युधिष्ठिर त्वया यानी आपके द्वारा अनुपृष्टानां आपने जो मुझसे पूछा था जो प्रश्न पूछे थे किसके विषय में सुहृदां मित्रों के विषय में तथा संबंधियों के विषय में नह जो हमारे सुहृतपुरे यानी द्वारिकापुरी में जो हमारे मित्र हैं जो संबंधी उनके विषय में आपने मुझसे पूछा था ना अब सुनो उनके विषय में विप्रशाप विमूढानां विप्रशाप उनको तो ब्राह्मणों ने शापित कर दिया ब्राह्मणों ने उनको ऐसा शाप दिया विमूढानां उन्होंने इतना बड़ा मूर्खता का कार्य किया जिसके कारण ब्राह्मणों ने उनको शाप दिया और उसके बाद क्या हुआ निघ्नतां सारे मर गए मारे गए सारे और कैसे मारे गए मोष्टि भी लाठियों द्वारा एक दूसरे को और मिथर का मतलब होता है परस्पर परस्पर मतलब एक दूसरे को ही मार डाला किसी कोई और ने आकर उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया आपस में ही मारे गए क्योंकि उन्होंने ऐसी मूर्खता की जिसके कारण विप्र ने एक ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया और उन्होंने क्यों एक दूसरे को मारा एक दूसरे को लाठियां क्यों मारी वे कहते वारुणी मधुराम पीतवा वारुणी एक ऐसी शराब होती है जो सड़े हुए चावलों से खमीर से उठे हुए चावल को चावल से बनाई जाती है मदिराम यानी वो शराब पीतवा पीकर ऐसी उन्होंने शराब पी और उसके बाद क्या हुआ मदोन्मथित यानी नशे में चूर हो गए वो बहुत ज्यादा नशे में आ गए और चेतसम यानी मानसिक स्थिति को उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और अजानताम जाना ही नहीं उन्होंने कि हम क्या कर रहे हैं किस तरह से अजानता मेवान्योनथ यानी कि एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे थे एक दूसरे को जान ही नहीं रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं क्योंकि वो शराब के नशे में धुत हो गए थे अब वो सारे मारे गए सारे के सारे मर गए लेकिन चतु पंचा विशेषता सिर्फ चतु मतलब चार और पंचा मतलब पांच सिर्फ चार पांच अवशेषता अब यदुवंश का कोई व्यक्ति नहीं रह गया जिस द्वारिकापुरी के वासियों के विषय में आप पूछ रहे थे उनको तो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया सारे के सारे आपस में ही लाठियों से मारे गए क्योंकि उन्होंने शराब पिया था और फिर जिसके कारण वो अपनी वास्तविक बुद्धि को खो दिया था और वो समझ नहीं पाए कि हम क्या कर रहे हैं और इस तरह से सारे मारे गए चतु पंचा विशेषता सिर्फ चार पांच बाकी रह गए हैं अनुवाद देखिए हे राजन चूंकि आपने द्वारिका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को ना पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे अब केवल चार पांच को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं आगे अर्जुन कहते हैं प्रायेण तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः प्रायेणैतद् भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः
अर्जुन बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं प्रायेण तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम। विचेष्टितम मतलब आप इसके विषय में ये मत सोचो कि ये यदुवंशी ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो भगवान के सारे भगवान के पुत्र थे, भगवान के पौत्र थे, भगवान के सारे संबंधी थे, तो वो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, वारुणी कैसे पी सकते हैं, आपस में कैसे लड़ाई कर सकते हैं। ईश्वरस्य विचेष्टिता ये भगवान की इच्छा से हुआ है। भगवान इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आए थे और भगवान अपनी कोई योजना से इस भौतिक जगत में अपने सारे जितने भी पार्षद हैं उनको भेजते हैं और कोई ना कोई योजना के द्वारा उन सारे पार्षदों को वापस अपने धाम में लेकर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्रायेण तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टिता, ये सब भगवान की इच्छा से हुआ जिसके कारण मिथो निघ्नन्ति भूतानी। मिथो यानी परस्पर लड़ाई करके निघ्नन्ति मारते हैं भूतानि जीव। अक्सर कभी ऐसा होता है जीव जो है एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, हत्या करते हैं। और कभी कभी क्या होता है भावयन्ति च यन्मिथ, कभी कभी आपस में एक दूसरे को पालते हैं, एक दूसरे का प्रोटेक्शन देते हैं, कभी कभी एक दूसरे को मार जाते हैं। ये सब भगवान की इच्छा से होता है। अनुवाद वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फल स्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद कहते हैं नृतत्व शास्त्रियों के अनुसार जीवन संघर्ष यथा योग्यतम की दीर्घ जीवता प्राकृतिकम नियम है। मतलब ये क्या है कि हम भौतिक जगत में आते हैं तो जीवन संघर्ष करते हैं अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, है ना। योग्यतम की दीर्घ जीवता कि हम ज्यादा से ज्यादा जीना चाहते हैं और कभी कोई मरना नहीं चाहता, तो जीवन संघर्ष करना यह हर जीव का प्राकृतिक नियम है। लेकिन आगे श्री रूपा जी बहुत ही स्पेशल बात बता रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे भी भगवान का परम निर्देश है। ये परम निर्देशन के अनुसार ही सब कार्य हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे भगवान की सदिच्छा समझा जाता है, और जब विश्व में उत्पात मचता है तब भी भगवान की परम इच्छा रहती है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। अतएव जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तब मनुष्य तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापित नियम यह है कि हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें, जो भी दान दें, वह भगवान की पूर्ण तुष्टि के निमित्त हो, भगवान की इच्छा के विरुद्ध ना हो। ना तो कुछ किया जाए, ना खाया जाए, ना यज्ञ किया जाए, ना ही दान दिया जाए। हमें विवेक से उस कार्यों में जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे कार्यों जिनसे भगवान रुष्ट होते हैं अंतर करना सीखना चाहिए। इसी तरह किसी कर्म का निर्णय भगवान की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जा सकता है। इससे वैयक्तिक स्वेच्छाचारिताओं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। हमें सदैव भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। ऐसा कर्म योग कर्मसु कौशलम कहलाता है। अर्थात किए गए कर्म जो भगवान से संबंधित हो, यदि यही है किसी वस्तु को ठीक से प्रसन्न करने की कला। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.27 में यत्करुषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कान्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम्। आप जो कुछ कार्य करते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, वो सब मुझे अर्पण करो। तो मानो अर्जुन पूछा कि उससे क्या फायदा, क्या लाभ होगा, तो भगवान कहते हैं शुभाशुभ करे फलई रेवम मोक्ष से कर्म बंधन, इससे तुम्हारे सारे शुभ और अशुभ कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। तो अर्जुन पूछे अशुभ कर्म फल समाप्त हो जाएंगे, ये तो सही है, शुभ क्यों? क्योंकि जब सारे कर्म जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक तो तुम कर्म के बंधन से छूटोगे नहीं। वास्तव में जीव इस भौतिक जगत में आया है कर्मों के बंधन से छूटने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि यहाँ पर आकर और कर्म करता रहता है, और भी बंधन में फंसता रहता है, और भी भौतिक जंजीरों से जकड़ता रहता है। तो इसका सरल उपाय है कि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें। भगवान जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अनुकूलस्य कृष्णस्य प्रतिकूलस्य वर्जन। अनुकूलस्य जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उसी को हमें कार्य को करना चाहिए। ये कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं तो करो, चाहे इससे मुझे कितना भी नुकसान हो रहा है, कितनी भी तकलीफ हो रही है, कितना भी दुख मिल रहा है, ये कार्य से भगवान को कष्ट हो रहा है, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, तो वो कार्य मत करो, चाहे उससे आपको कितना ही ज्यादा लाभ क्यों ना मिले। तो यही चीज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें सदैव भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। और ऐसा कर्म योग सुख और कर्म सुकौशलम, वास्तव में कर्म का कौशल यही है कि हम कर्मों के बंधन से छूटें, और वो तभी संभव है जब हम अपने सारे कर्मों के फल भगवान पर छोड़ देते हैं। और आगे अर्जुन बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, वे कहते हैं जलो कसाम जले यत्वन महांतो दंत्यनीयस दुर्बलान बलिनो राजन महंतो बलिनो मिता एवं बलिष्ठर यदुभिर महद्भिर रितिरान विभु यदुन यदु भिरंतो भिहन्योन्यम भूभारान संजहारह जलौकसाम जलीयत्वन महंतो दंत्यरीयस दुर्बलान बलिनो राजन महंतो बलिनो मितः एवं बलिष्ठर यदु एवं बलिष्ठर यदुभि महद्भिरितिरान विभु यदुन यदुभिरन्योन्यम भूभारान संजहारः जलौकसाम जले। जलौकस मतलब जो जलचर होते हैं, जो जल के प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं, जल के बड़े बड़ी मछलियां जो होती हैं वो छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं, खा जाते हैं उनका, वही छोटी मछलियों को खाना ही उनका मतलब आहार होता है, और बड़ी जो मछलियां होती हैं उनसे भी बड़ी जो मच्छर होते हैं वो उनको खा जाते हैं, मतलब इस तरह से होता है। उसी तरह ये आज अर्जुन बता रहे जलो कसाम जले यद्वन महंतो दंत्य ऋणी, मतलब छोटों को उदंत्य ऋणी मतलब छोटे को वो ग्रहण कर लेते हैं, निगल लेते हैं। उसी प्रकार दुर्बलान बलिनो राजन महंतो बलिनो मिथ, जो दुर्बल थे उनको बलवानों ने मारा, और जो बहुत ज्यादा बलवान थे उन्होंने दुर्बलों को मारा। एवं बलिष्ठ यदुभिर, इसी तरह से जो यदुओं में जो बहुत ज्यादा बलवान होते थे उन्होंने कम बलवानों को, और फिर जो कम बलवान थे उन्होंने एकदम जो छोटे छोटे यदु मतलब जिनके पास बिल्कुल शक्ति नहीं थी, शक्तिहीन थे, विभो ने उनको एक दूसरे को मारा, और यदुभिर्यन्योन्यम भूभारान संजहार। तो इस तरह से सारे यदुवंशी आपस में ही लड़ के भिड़ के मर गए। और इस तरह से भगवान ने क्या कहा, भूभारान मतलब धरती का भार संजहार उतार दिया। ये सब यदुवंशी भगवान की इतना बड़ा वंश था, करोड़ों करोड़ लोग थे उसके अंदर, तो ये सब किसी से भी वरना नहीं मरते,
इनके पास इतनी शक्ति थी, इतना पराक्रम था कि इनको कोई हरा नहीं सकता था। ये भगवान के वंशज थे। तो भगवान ने एक युक्ति सोची, आपस में सबको लड़वा के मरवा के इस धरती का भार हल्का कर दिया। अनुवाद, हे राजा, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटी छोटी तथा निर्बल प्राणियों को निगल जाते हैं, उसी तरह भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को बिड़ा दिया। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये भौतिक जगत का नियम है। जीवन संघर्ष में योग्यतम की उत्तर जीविता, क्योंकि जगत में बुद्धिबद्ध जीवों को के मध्य जो असामान्यता है वह भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है। प्रकृति पर प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीव का मूल कारण है। ऐसे बनावटी प्रभुओं की सुविधा के लिए ही भगवान की भ्रामक शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है। प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असामान्यता की सृष्टि हुई है और इसी से जीवन संघर्ष का नियम आया है। क्योंकि जीव की यह इच्छा है कि मैं प्रभुत्व जताना चाहता हूँ, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, तो यदि कोई छोटा नहीं होगा तो बड़ा कैसे बनेगा। तो भगवान ने जीव की इस इच्छा को पूरा करने के लिए इस भौतिक जगत में कुछ को निर्बल बनाया, कुछ को सबल बनाया, उनके कर्मों के अनुसार कुछ को छोटा बनाया, किसी को बड़ा बनाया। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असामान्यता की सृष्टि हुई और इससे जीवन संघर्ष का नियम आया है। आध्यात्मिक जगत में ना तो ऐसी असामान्यता होती है ना ऐसा जीवन संघर्ष। ये भौतिक जगत में क्योंकि जीव की इच्छा इतनी मलिन है कि वो हर कोई चाहता है कि मैं प्रभु बनना चाहता हूँ, तो फिर इसी के लिए यहाँ पर द्वंद्व है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसमें कोई द्वंद्व नहीं। आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष इसीलिए नहीं रहता क्योंकि प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व शाश्वत है। उनको पता है कि हमारा अस्तित्व शाश्वत है। जो भी मेरी स्थिति है वो शाश्वत है। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान को प्रसन्न करना मेरे जीवन का लक्ष्य। और कुछ पता ही नहीं है, वहां पर कुछ हृदय के अंदर इच्छा ही नहीं है तो कोई संघर्ष नहीं है। सब कोई अपना ही काम कर रहे होते हैं, सब कोई अपने ही काम में आनंद ले रहे होते हैं। वहां असामान्यता इसलिए नहीं रहती क्योंकि प्रत्येक प्राणी परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और कोई भी लाभ के लिए भगवान का अनुकरण नहीं करता। भगवान हर वस्तु के यहाँ तक कि जीवों के भी सृष्टा होने के कारण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है। लेकिन भौतिक जगत में माया के जादू से भगवान के साथ का यह नित्य संबंध भूला दिया जाता है। अतएव जीवन संघर्ष तथा योग्यतम की उत्तर जीविता नियमों का बद्ध हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि वास्तव में तो जीव शाश्वत है, भगवान का अंश है, भगवान का ही सेवक, उसको सेवा करके आनंद होगा। क्योंकि लेकिन जीव इस भौतिक जगत में आ जाता है तो माया जो है वो अपने जादू से क्या होता है, भगवान के साथ यह जो नित्य संबंध है वो भूल जाता है और वो क्या चाहता है, किसी तरह से इस भौतिक जगत में मैं आनंद प्राप्त करूं। और आनंद प्राप्त करने के लिए वो प्रभुत्व जताना चाहता है दूसरों को दबा कर, क्योंकि आनंद जीव को तभी प्राप्त होता है जब उसके सामने कोई दुखी होगा, वरना तो उसको पता ही नहीं चलेगा ना। जब कोई और निर्बल नहीं होगा, जब कोई और कमजोर नहीं होगा, जब कोई और दुखी नहीं होगा तो फिर हमें हमारे आनंद का कैसे पता चलेगा। तो उसी तरह से सबको कर्मों के अनुसार, किसी को दुख मिलता है, किसी को निर्बलता मिलती है, किसी को शक्तिहीन शरीर मिलता है और किसी को ज्यादा बलशाली शरीर मिलता है। तो ये सब इस भौतिक जगत में होता है और जीव क्योंकि अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल जाता है
और इसलिए जीव यहाँ पर जीवन संघर्ष करना चाहता है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है और दूसरों को दबाना चाहता है, यही इस भौतिक जगत का नियम है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, वहाँ पर नित्य आनंद है, नित्य सेटिस्फेक्शन है। आप जिस भी स्थिति में हो, यहाँ भौतिक जगत का क्या है, कोई सेटिस्फाई नहीं है, चाहे उसको कितना भी इस भौतिक जगत का राज्य भी मिल जाएगा ना, तो भी वो सुखी नहीं होगा। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, यदि आपको वो सारी चीजें भी प्राप्त हो जाएंगी ना, तो भी इस भौतिक जगत में आप आनंदित नहीं हो सकोगे। लेकिन नित्य जगत में जीव नित्य आनंदित है, चाहे उसके पास जो कुछ भी है उसी में आनंदित है, क्योंकि वो जानता है कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान की प्रसन्नता से वो आनंदित होता है। तो वहां पर कुछ भी कष्ट नहीं, कुछ भी द्वंद्व नहीं, कुछ भी जीवन संघर्ष नहीं है। तो इस तरह से अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर को संक्षिप्त में बताया कि अब द्वारिका में कोई नहीं रहा, सबकी मृत्यु हो गई है, और वो कैसे हुई थी वो अब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि यदुवंशों का सर्वनाश कैसे हुआ, कैसे ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया था और कैसे आपस में मरे। ये बहुत बड़ा लंबा है, उसको हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। जितना अभी सिर्फ यही पता है कि यदुवंशों का सर्वनाश हो गया है और हमें आगे चलना है, क्योंकि परीक्षित महाराज का जन्म होगा, उनको श्राप मिलेगा और सुखदेव गोस्वामी उनको श्रीमद् भागवतम महापुराण श्रवण कराएंगे, तो हम सब साथ रहेंगे और इसी तरह से प्रेम से भगवान के शब्दों को, भागवतम के इन शब्दों को श्रवण करते रहेंगे। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।